पेश है पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के 12वें संकल्प का सार। तो ये सत्संकल्प हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री अगर एक दूसरे के प्रति पवित्र नजरिया रखें तो इससे ना सिर्फ उनका अपना बल्कि परिवार और समाज का भी भला हो सकता है। तो पहली और सबसे जरूरी बात, नारी के दिव्य स्वरूप को पहचानना। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि नारी ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी। लेकिन नारी का एक कामनी रूप भी है जिसे वासना की दृष्टि से देखा जाता है, और आप समझिए इस दृष्टि को एक विषैली नागिन जितना खतरनाक बताया गया है। तो उपाय क्या है? बहुत सरल है, अपने से बड़ी उम्र की स्त्री में माँ को देखें, बराबर वाली में बहन और छोटी में अपनी बेटी को। दूसरी बात ये कि ये सिद्धांत सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार क्षमता और भावना में दोनों लगभग समान है। उनका रिश्ता आप कह सकते हैं सिर्फ काम वासना का नहीं, बल्कि स्नेह, कर्तव्य और आत्मीयता का एक पवित्र संबंध होना चाहिए। और आखिर में तीसरी बात, असली शक्ति और सुख पवित्रता में ही है। देखिए, वासना और प्रेम में स्वर्ग और नरक जितना बड़ा अंतर है। वासना अपने साथ लाती है ईर्ष्या, कलह और पतन, वहीं पवित्र प्रेम में त्याग है, उदारता है और शांति है। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन का भी असली मकसद वासना पूर्ति नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलकर जीवन की जिम्मेदारियां निभाना है। तो सार यह है कि पुरुष और स्त्री के बीच जब एक पवित्र दृष्टि होगी तभी एक सुसंस्कृत समाज और एक नए युग की नींव रखी जा सकती है।
नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर चर्चा करने वाले हैं।
जी।
ये विचार हमें पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी पुस्तक से मिला है, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प।
जी बिल्कुल।
इसमें समाज को एक नई दिशा देने के लिए कुछ सिद्धांत है और हम आज इसके 12वें संकल्प पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
और वो संकल्प है नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे।
हाँ, सुनने में तो मतलब बहुत ही सीधा और सरल लगता है।
जी, लगता तो सरल है लेकिन इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। सत्संकल्प का मानना है कि जब तक एक दूसरे के प्रति नजरिया वो पवित्र नहीं होगा, समाज में आपसी सम्मान और सहयोग पनप ही नहीं सकता।
बिल्कुल। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सत्संकल्प में नारी को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसे संसार की सबसे उत्कृष्ट पवित्रता कहा गया है। मुझे एक बात इसमें खास लगी कि नारी को उसके अलग अलग रूपों से परिभाषित किया है।
जैसे?
जैसे माँ, पत्नी, बहन और पुत्री। ये सभी रूपों में त्याग और सेवा का भाव जुड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी?
ये एक बहुत दिलचस्प अवलोकन है। सत्संकल्प के अनुसार ये भूमिकाएं नारी की शक्ति को दर्शाती हैं।
अच्छा।
यहाँ एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया गया है, अग्नि का।
अग्नि?
हाँ, जैसे अग्नि जीवन देती है, ऊर्जा देती है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से छुआ जाए तो वो जला भी सकती है।
सही बात है।
सत्संकल्प कहता है कि नारी का एक रूप रमणी का भी है, मतलब जब उसे सिर्फ भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। इस नजरिए को एक सुनहरी कटार या काली नागिन जैसा बताया गया है, देखने में आकर्षक पर अंत में दुख देने वाला।
अग्नि और रमणी रूप का ये जो रूपक है ये काफी इम्पैक्टफुल है, लेकिन इससे खतरा भी तो है ना?
खतरा? कैसा खतरा?
कि कहीं नारी की पहचान सिर्फ दो चरम सीमाएं में ना बंध जाए। मतलब या तो वो पूजनीय देवी है या फिर विनाशक, एक सामान्य इंसान के तौर पर उसकी पहचान कहीं खो तो नहीं जाती?
ये
एक बहुत जरूरी सवाल है, और शायद इसी दुविधा से बचने के लिए सत्संकल्प एक व्यवहारिक रास्ता भी सुझाता है।
अच्छा, वो क्या है?
वो कहता है कि इस सैद्धांतिक बात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो।
कैसे?
अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को माँ की तरह सम्मान दो, अपने बराबर वाली को बहन की तरह स्नेह और छोटी को बेटी की तरह प्यार दो। ये नजरिया उस रमणी वाली भावना को खत्म कर एक पवित्र और आनंदमयी रिश्ते की नींव रखता है।
ठीक है, तो ये पुरुषों के लिए एक साफ ढांचा तैयार करता है, लेकिन क्या ये एक तरफा रास्ता है?
मतलब मेरा मतलब है, क्या सत्संकल्प में इस पर भी बात हुई है कि ये नजरिए का बदलाव स्त्रियों के लिए कैसा होगा? क्या उन्हें भी पुरुषों को इसी तरह पिता, भाई या पुत्र के रूप में देखने के लिए कहा गया है?
हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात दोनों पर बराबर लागू होती है।
अच्छा।
सत्संकल्प साफ कहता है कि क्षमता, बुद्धि और भावना में स्त्री और पुरुष लगभग समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये दृष्टिकोण दोनों को एक दूसरे के प्रति रखना है। और यहीं पर सत्संकल्प प्रेम और वासना के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है।
स्वर्ग और नरक जितना बड़ा?
जी बिल्कुल। वासना में जलन, झगड़ा और गिरावट है, जबकि पवित्र प्रेम में त्याग है, उदारता है, शांति है। उनका मानना है कि इस पवित्रता में ही असली ताकत है।
तो अगर हम इससे समेटें तो ये संकल्प स्त्री पुरुष के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहा है जो शारीरिक आकर्षण से कहीं ऊपर आपसी सम्मान और गरिमा पर आधारित हो।
बिल्कुल।
और पूज्य गुरुदेव के अनुसार यही सोच एक बेहतर समाज और नए युग की बुनियाद बन सकती है।
सही कहा। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है।
हम वो क्या है?
सत्संकल्प में परदारेषु मातृवत जैसे सूत्र दिए हैं, यानी दूसरे की पत्नी को माँ समान समझो। आज के आधुनिक समाज में जहाँ मीडिया और कल्चर में रिश्तों को अक्सर बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है, इस पवित्र दृष्टि वाले सिद्धांत को अपनी निजी जिंदगी और समाज में फिर से अपनाने के क्या मायने हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।
आज हम 20वीं सदी के एक महान आध्यात्मिक विचारक और समाज सुधारक पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पुंज पर चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प।
सत्संकल्प यानी एक महान इरादा।
जी, एक प्रण। इस पुस्तक में कुल 24 प्रण हैं और आज हम इसके 12वें संकल्प की गहराई में उतरेंगे। और ये संकल्प है नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। पहली नज़र में ये एक सीधी साधी बात लगती है, लेकिन आज के दौर में शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे मुश्किल आदर्शों में से एक है।
बिल्कुल।
तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक वाक्य के पीछे का दर्शन क्या है और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए इसके क्या मायने हैं।
और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकल्प सिर्फ अविवाहित लोगों या कह सकते हैं ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है।
अच्छा।
पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हर एक इंसान पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी उम्र या अवस्था में हो।
हर एक पर?
जी।
उनका तर्क था कि जब तक समाज में एक दूसरे के प्रति ये पवित्र भावना नहीं होगी, तब तक कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग की अच्छाइयों और क्षमताओं का न तो सही से सम्मान कर पाएगा
और न ही उसका फायदा उठा पाएगा।
बिल्कुल। ये समाज की नींव का पत्थर है एक तरह से।
चलिए तो फिर इस नींव को थोड़ा और खोलते हैं।
सत्संकल्प की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर और मजबूत स्थापना से। इसमें लिखा है, नारी इस संसार की सर्वोत्कृष्टता पवित्रता है। और फिर नारी के अलग अलग रूपों का बड़ा ही भावुक वर्णन मिलता है, जैसे माँ के रूप में।
हाँ, कि वो धरती पर प्रेम और वात्सल्य का सागर बनकर आती है।
जी।
और पत्नी के रूप में उसे त्याग, बलिदान और प्रेम की जीती जागती मूर्ति कहा गया है।
बहन के रूप में उसमें स्नेह और उदारता का भाव है। तो बेटी के रूप में?
वो अपनी मासूमियत से इस दुनिया की कठोरता में रस घोल देती है।
सही बात है। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ईश्वर ने अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति नारी के रूप में ही बनाई है। उन्होंने नारी को सत्य, शिव और सुंदर का संगम कहा है। मतलब ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है।
बिल्कुल। सत्संकल्प कहता है कि नारी की आंखों में एक ऐसी दिव्य ज्योति होती है जो पत्थर दिलों में भी संवेदना जगा सकती है। उसे प्रेरणा, भावना और स्फूर्ति का साकार रूप माना गया है।
स्फूर्ति का साकार रूप?
हाँ, मतलब वो एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दे में भी जान फूंक सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ एक स्त्री की प्रेरणा ने किसी हारे हुए इंसान को भी महान बना दिया। तो ये जो वर्णन है, ये नारी को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी, एक दैवीय शक्ति के रूप में देखता है।
ये तो एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है, नारी को एक दैवीय शक्ति के रूप में देखना। लेकिन इसी के साथ सत्संकल्प में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है।
जी।
नारी की इस महानता को समझाने के लिए अग्नि का एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे आग के बिना जीवन नहीं चल सकता, वो हमें ऊर्जा देती है, खाना पकाती है, गर्मी देती है, लेकिन
अगर उसी आग को गलत इरादे से या लापरवाही से छू लिया जाए तो वो जलाकर राख भी कर सकती है।
हाँ।
पूज्य गुरुदेव इसी दोहरे पहलू की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि नारी के इन अनगिनत गुणों के साथ साथ एक ऐसा दोष भी जुड़ा है जिसका गलत स्पर्श भयंकर पीड़ा दे सकता है, जीवन को तबाह कर सकता है।
और वो दोष क्या है?
वो दोष है नारी का रमणी रूप।
रमणी रूप
सत्संकल्प में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि जब भी किसी स्त्री को सिर्फ रमण की वस्तु यानी भोग या वासना की नजर से देखा, सोचा या छुआ जाएगा,
तभी
वो काली नागिन की तरह अपना जहरीला डंक मारेगी। इसका मतलब है कि वो रिश्ता, वो सोच व्यक्ति के पतन और कष्ट का कारण बन जाएगी।
ये रमणी रूप वाली बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे, ये आज के समय में किस तरह से दिखती है?
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक तरह से वो है जिसे आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में हम ऑब्जेक्टिफिकेशन कह सकते हैं।
ऑब्जेक्टिफिकेशन
यानी किसी इंसान को उसकी पूरी इंसानियत, उसके विचारों, उसकी भावनाओं, उसकी आत्मा के साथ न देखकर सिर्फ एक शरीर या उपभोग की वस्तु मान लेना। जब ऐसा होता है तो रिश्ते की पवित्रता खत्म हो जाती है। सत्संकल्प में और भी उदाहरण है, जैसे बिच्छू देखने में ठीक लगता है पर उसका डंक खतरनाक है। मधुमक्खी शहद देती है, बहुत उपकारी है, पर उसे छिड़ोगे तो उसका डंक भी सहना पड़ेगा। संदेश साफ है कि नारी के इस कामिनी या रमणी रूप में जो जहर की छोटी सी पोटली या सुनहरी कटार छिपी है, उससे बचना ही समझदारी है। ये शक्ति के सही और गलत इस्तेमाल का सवाल है।
ठीक है, तो ये तो हुई बचने की बात कि रमणी रूप से सावधान रहना है, लेकिन ये एक तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण हुआ कि ये मत करो।
हाँ, कह सकते हैं।
तो फिर सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है? क्या सत्संकल्प कोई सकारात्मक मार्ग भी दिखाता है?
बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये सिर्फ रोकता नहीं, रास्ता भी दिखाता है, और रास्ता बहुत ही सरल और व्यावहारिक है जिसे कोई भी अपना सकता है।
वो क्या है?
सत्संकल्प कहता है कि अपने नजरिए को बदलो, अपनी भावना को ऊंचा उठाओ। इसके लिए तीन सरल रिश्ते दिए गए हैं। अपने से बड़ी उम्र की नारी को माता के रूप में देखो।
ठीक है।
अपनी उम्र की नारी को बहन समझो।
और
अपने से छोटी को पुत्री की तरह देखो।
ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, पर एक सवाल मन में आता है।
पूछिए।
आज के प्रोफेशनल माहौल में जहाँ स्त्री पुरुष सहकर्मी होते हैं, दोस्त होते हैं, क्या ये माता बहन बेटी वाला वर्गीकरण रिश्तों को सीमित नहीं कर देगा? क्या दोस्ती का भाव नहीं रखा जा सकता?
ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और देखिए, यहाँ इन शब्दों का मतलब रिश्ते का कोई लेबल लगाना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते के पीछे की भावनाओं को समझना है।
भावना?
जी, मूल भावना है पवित्रता और सम्मान की। जब आप किसी को माँ, बहन या बेटी की भावना से देखते हैं, तो आपके मन में उसके लिए वासना नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्नेह और सम्मान का भाव आता है। दोस्ती का रिश्ता भी पवित्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते उसके पीछे की भावना निस्वार्थ हो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब हम इन पवित्र भावनाओं को अपने अंदर बढ़ाते हैं, तो हमें वही आनंद मिलता है जो माता सरस्वती, लक्ष्मी या दुर्गा के चरणों में बैठकर मिलता है। ये अपनी भावनाओं को नीचे गिराने की जगह उन्हें ऊपर उठाने की, उनका परिष्कार करने की साधना है।
तो ये एक तरह की मानसिक साधना हुई अपने दृष्टिकोण को बदलने की।
हाँ, ये सिर्फ एक भावना नहीं, एक पूरा दर्शन है। हम गायत्री उपासक हैं, और गायत्री को वेद माता कहा जाता है, यानी हम ईश्वर की शक्ति को मात्र रूप में ही पूजते हैं।
सही बात है।
तो जब हम हर स्त्री में उसी माता, उसी दैवीय शक्ति का अंश देखने लगते हैं, तो वासना का भाव अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है। ये भक्ति का, आप कहिए, प्रैक्टिकल रूप है, जो सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए।
यहाँ पर एक और स्वाभाविक प्रश्न उठता है, और वो है दाम्पत्य जीवन का, यानी शादीशुदा जिंदगी का।
जी बिल्कुल।
अगर हर स्त्री में माता, बहन या पुत्री को ही देखना है, तो फिर विवाह और गृहस्थ जीवन की व्यवस्था का क्या होगा?
सत्संकल्प इस पर भी बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। वो विवाह को खारिज नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को बहुत ऊंचा उठा देता है।
कैसे?
उसके अनुसार विवाह का उद्देश्य दो शरीरों को एक आत्मा बनाकर जिंदगी की मुश्किल गाड़ी को मिलकर खींचना है, न कि सिर्फ अपनी वासनाओं को पूरा करने का लाइसेंस हासिल करना।
तो क्या इसमें शारीरिक संबंधों के लिए कोई जगह नहीं है?
जगह है, लेकिन एक बहुत ही मर्यादित और ऊंचे उद्देश्य के साथ। सत्संकल्प कहता है कि मानवीय दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए, केवल और केवल संतानोत्पत्ति के विशेष प्रयोजन के लिए, यानी एक नई पीढ़ी को जन्म देने के महान उद्देश्य के लिए, शारीरिक संबंध की सीमित छूट दी गई है।
केवल संतानोत्पत्ति के लिए?
जी। इसके अलावा पति पत्नी का जीवन भी दो सगे भाइयों या दो सगी बहनों की तरह पवित्र, स्नेह और आपसी सम्मान से भरा होना चाहिए। यह एक बहुत ऊंचा आदर्श है, पर दिशा यही है।
ये बात जितनी पुरुषों पर लागू होती है, क्या उतनी ही स्त्रियों पर भी लागू होती है? क्योंकि संकल्प का शीर्षक है नर नारी परस्पर, यानी ये दोनों तरफ से होना चाहिए।
आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और यही इस सत्संकल्प की सबसे प्रगतिशील और महत्वपूर्ण बात है।
अच्छा,
जो कुछ भी नारी के लिए कहा गया है वही थोड़े बहुत शब्दों के हेर फेर के साथ पुरुष के लिए भी उतना ही सच है। सत्संकल्प साफ कहता है कि मनुष्य होने के नाते दोनों की क्षमता, बुद्धि और भावनाएं लगभग एक जैसी हैं। दोनों की अपनी कुछ खासियतें हैं और अपनी कुछ कमियां भी हैं, और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे का सहारा लेते हैं।
एक दूसरे का सहारा।
लेकिन ये सहारा सिर्फ काम वासना के लिए नहीं है, ये सहारा माता, पुत्र, भाई, सखा या एक आत्मीय मित्र के पवित्र और स्वर्गीय रिश्ते के रूप में भी हो सकता है। सत्संकल्प प्रेम और वासना में स्वर्ग और नरक जितना बड़ा अंतर बताता है।
स्वर्ग और नरक जितना?
हाँ, परिच प्रेम में त्याग है, उदारता है, शांति है, जबकि वासना में जलन है, झगड़ा है, अधिकार की लड़ाई है और अंत में पतन है। प्रेम देना चाहता है, वासना लेना चाहती है, बस यही मूल अंतर है।
तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि पवित्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है,
असीम शक्ति। सत्संकल्प का एक वाक्य है जो दिल पर सीधा असर करता है। पवित्रता में जो अजस्र बल है वो वासना के नारकीय कीचड़ में कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता।
वाह!
इसका सीधा सा मतलब है कि पवित्रता में जो जबरदस्त, कभी न खत्म होने वाली ताकत है वो वासना की गंदगी में कभी नजर नहीं आ सकती। असली शक्ति भोग में नहीं, संयम में है।
और शायद इसी पवित्र भावना की नींव पर एक नए बेहतर युग का निर्माण हो सकता है।
निश्चित रूप से सत्संकल्प के अंत में तीन महान भारतीय सूत्र दिए गए हैं जो इस पूरी भावना को समाज में स्थापित करते हैं।
कौन से सूत्र हैं वे?
पहला, आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो। दूसरा, परद्रव्येषु लोष्ठवत, यानी दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। और तीसरा, जो इस संकल्प का आधार है, परदारेषु मातृवत, यानी पराई स्त्री को माता के समान समझो।
परदारेषु मातृवत?
जी।
पूज्य गुरुदेव का मानना था कि अगर ये तीन भावनाएं समाज में आ जाएं, तो इस धरती को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता।
जो चर्चा वाकई मन में गहरा विचार छोड़ जाती है।
सत्संकल्प में वासना का एक कारण उस समय के सिनेमा, गंदे चित्र और अश्लील साहित्य को बताया गया था। आज के डिजिटल युग में जहां इस तरह का कंटेंट और प्रभाव पहले से हजारों गुना ज्यादा है, फोन की एक क्लिक पर उपलब्ध है, ऐसे में कोई व्यक्ति इस पवित्र दृष्टि को न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति अपने नजरिए में भी कैसे विकसित कर सकता है? इसे बचाने के लिए वो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकता है?
यह आज के युग का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब भी हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। पहली चीज तो है सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस। हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करना होगा। टेक्नोलॉजी खुद में अच्छी या बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है।
सही बात है।
अगर हम अपने मन को लगातार वासना बढ़ाने वाली चीजों से भरेंगे तो पवित्र दृष्टि रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
यानी एक तरह का कॉन्टेंट फिल्टर हमें अपने ऊपर लगाना होगा।
बिल्कुल। और दूसरा अभ्यास है माइंडफुलनेस या साक्षी भाव। जब भी मन में कोई गलत विचार आए तो उससे लड़ने या उसे दबाने की बजाय बस उसे एक दर्शक की तरह देखें।
बस देखें।
हाँ, बस देखें कि ये विचार कहाँ से आया और ये मुझ पर क्या असर डाल रहा है। जब आप विचार के साथ बहने की जगह उसे देखना शुरू कर देते हैं तो उसका जोर अपने आप कम हो जाता है।
अच्छा।
और तीसरा और सबसे मजबूत उपाय है अपने जीवन का कोई ऊंचा लक्ष्य गनाना। जब आपके पास कोई बड़ा मकसद होता है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अपनी ओर खींच नहीं पाती, आपकी ऊर्जा एक सही दिशा में लग जाती है। पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती ओढ़ा जाए, ये तब पैदा होती है जब जीवन में कोई महान उद्देश्य आ जाता है।